ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत ढही, बचाव और राहत कार्य जारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओवरहेड बिजली के तारों को जमीन के अंदर बिछाने से जुड़े एक पायलट प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन हाउसवेयर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और प्रसार भारती तथा हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिताओं के प्रसारण के लिए 3 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया है कि दुर्घटना में लगभग 10 लोगों के हताहत होने की खबर है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने घटनास्थल का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में श्री मिश्रा ने कहा कि लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन गली संकरी होने के कारण प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
यहाँ के लोकल लोग सुबह से मदद कर रहे हैं, नगर निगम लगा हुआ है, एनडीआरएफ लगा हुआ है। 2 लोगों को हम बचा नहीं पाए, 4 लोग अभी अस्पताल में और खतरे से बाहर है। 2-3 लोग और अभी और मलबे के अंदर हो सकते हैं, ऐसा आशंका है। लेकिन वो 1.5 फुट की गली है, उसमें मशीनें नहीं जा सकती, मलबा हाथों से हटाना पड़ रहा है, सब लोग हाथों से निकाल रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग अंदर जा भी नहीं सकते, मलबा बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, राहत कार्य बहुत ही दुष्कर है।
हादसे में मृतकों के प्रति मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी संवेदना व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को इस घटना पर रिपोर्ट देने को कहा है। दिल्ली के सदर बाजार मेन मार्केट में आज दोपहर कॉस्मेटिक्स की कुछ दुकानों में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना दोपहर लगभग 3:39 पर मिली। विभाग के अनुसार आग बुझाने के लिए मौके पर 27 दमकल गाड़ियों को भेजा गया। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के जोरबाग इलाके का दौरा किया। उन्होंने हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों में जोरबाग की ऐतिहासिक रूप से उच्च मतदान भागीदारी के लिए वहां की जनता का धन्यवाद किया। इस दौरान उनके साथ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने यहां स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को सभी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए।
इन्होंने वोटिंग का अपना रिकॉर्ड बनाया, तो इसलिए सारे एनडीएमसी अधिकारियों के साथ में यहाँ पर आए हैं। सभी जो इनके इश्यूज थे वो हमने सुना, सारे अधिकारियों को बताया और वो हम उसको बहुत जल्दी पूरा भी करेंगे।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज शहर के रोहिणी सेक्टर 13 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्मित 3 नए मनोरंजन केंद्रों का उद्घाटन किया। ये केंद्र देना अपार्टमेंट, सुनहरी बाग अपार्टमेंट और केनरा अपार्टमेंट परिसर में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि इन मनोरंजन केंद्रों में वरिष्ठ नागरिक आपस में संवाद कर सकेंगे, इंडोर खेलों में भाग ले सकेंगे, पठन पाठन कर सकेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता के माध्यम से सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अकेलेपन में कमी आएगी बल्कि उनका मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी सुदृढ़ होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद की बैठक कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में आज हुई। इस बैठक में कार्यकारी परिषद ने प्रोफेसर रजनी अब्बी को विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर का निदेशक नियुक्त करने की स्वीकृति भी प्रदान की। बैठक में कुलपति ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट के 4th वर्ष के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि लगभग 60% विद्यार्थियों के 4th साल में अपग्रेड करने की संभावना है। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बैठक में कुलपति ने बताया कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट आउटकम में पिछले साल के मुकाबले विश्वविद्यालय ने 14 स्थान की छलांग लगाई है और अब विश्व में 30वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओवरहेड बिजली के तारों को जमीन के अंदर बिछाने से जुड़े एक पायलट प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के शालीमार बाग विधानसभा के बीएच ईस्ट ब्लॉक में ओवरहेड बिजली की तारों को जमीन के अंदर बिछाया जाएगा। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवरहेड बिजली की तारें दिल्ली की सुरक्षा और सुंदरता दोनों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय रही हैं। उन्होंने कहा कि तारों के जमीन के नीचे होने से सड़कें अधिक सुंदर दिखेंगी और कॉलोनियां पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनेंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिल्लीवासियों को नई सुविधा मिलने जा रही है।
ओवरहेड वायर फ्री दिल्ली हो ताकि सुरक्षित और निर्बाध बिजली क्षेत्र को मिले और जो बुरी हालत ओवरहेड वायरिंग के कारण से शहर की दिखाई देती है उस सबको खत्म किया जाए। मुझे खुशी है कि आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिल्ली की जनता को एक नई सुविधा, एक नया विजन और एक नया आकाश देने का काम सरकार कर रही है।
दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोशल मीडिया और ई कॉमर्स पोर्टलों से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री तत्काल बंद करने को कहा है। पुलिस ने पोर्टल को पटाखों की सूची न लगाने और दिल्ली में ग्राहकों के लिए इस तरह की सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है। उन्हें पटाखों की बिक्री और आपूर्ति पर प्रतिबंध के बारे में ग्राहकों को सूचित करने के लिए एक स्पष्ट सूचना प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनों के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर दिल्ली में रामलीला आयोजित करने वाली समितियों को मैदान और बिजली बिना किसी शुल्क के देने की मांग की। अपने पत्र में श्री खंडेलवाल ने कहा कि जिस प्रकार कांवड़ यात्रा और हज के लिए जाने वाले को स्थान और बिजली निःशुल्क दी जाती है, उसी तर्ज पर रामलीला समितियों को भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए।
कि जिस तरह से कांवड़ यात्राओं की सारी व्यवस्था बहुत बेहतरीन व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की, निशुल्क जगह दी, निशुल्क बिजली दी, हज यात्रियों को लगातार निशुल्क जगह दी जाती है और निशुल्क बिजली दी जाती है, हज यात्रियों को सब्सिडी भी दी जाती है, उसी तर्ज पर रामलीला करने वाले सभी लोगों को मैदान सरकार की ओर से निःशुल्क दिया जाए और बिजली भी निःशुल्क दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में आगामी रामलीला आयोजनों के मद्देनजर रामलीला संघ के प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद और कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से विस्तारपूर्वक संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार रामलीला आयोजनों को सुचारू, सुरक्षित और सम्मानपूर्वक संपन्न कराने के लिए हर आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धा, सेवा और उल्लास से भरे इस सांस्कृतिक पर्व को गरिमा के साथ संपन्न कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन हाउसवेयर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये प्रदर्शनी भारतीय उद्योग की क्षमता, कौशल और आत्मबल की प्रेरणादायक अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली उद्यमशीलता की भूमि है और दिल्ली सरकार राष्ट्र निर्माण, रोजगार तथा स्थानीय उत्पादन से जुड़े हर प्रयास का स्वागत करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने में स्टील उद्योग एक सशक्त कड़ी बनकर उभरा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो मैं सोचती थी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज ऐसी है। आज इस एग्जीबिशन के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरी विधानसभा के लोग स्टील इंडस्ट्रीज में कितना आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। और निश्चित मानिए, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के इस प्रोडक्ट के लिए भी काम करूंगी, दिल्ली शहर के लिए भी काम करूंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और विकसित भारत के निर्माण में उनका सक्रिय सहयोग लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया मानती है कि भारत की दो असीम शक्तियां हैं, एक उसकी जनसांख्यिकी और दूसरा उसका लोकतंत्र। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद रोजगार मेले में बोल रहे थे। नवनियुक्तों को बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार की रोजगार मेला पहल से लाखों युवा केंद्र सरकार में स्थायी नौकरियां हासिल कर चुके हैं और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
16वें रोजगार मेले का आयोजन युवाओं को रोजगार प्रदान करने के जरिए सामाजिक विकास का लक्ष्य हासिल करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन के अंतर्गत किया गया। नए नियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करेंगे। इनमें रेल मंत्रालय, राजस्व विभाग, कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय आदि शामिल हैं। देश भर में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2022 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 15 रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
रेल मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और तकनीक संगत बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए कई उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें एक ही बार में पंजीकरण व्यवस्था शामिल है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पहली बार ग्रुप सी के पदों और लेवल 1 श्रेणी के पदों के लिए वर्ष 2024 से वार्षिक भर्ती कैलेंडर लागू किया गया है। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और उम्मीदवारों को अधिसूचना जारी होने से लेकर अंतिम परीक्षा तक अस्पष्टता बनी रहती है। धोखाधड़ी रोकने और तकनीक का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। आधार आधारित EKYC, रियल टाइम फेशियल पहचान और फोटो सत्यापन परीक्षा प्रक्रिया के अभिन्न अंग है। बड़े आने पर परीक्षाएं कराने के लिए ढांचागत सुविधाओं का काफी विस्तार किया गया है। 325 से अधिक परीक्षा केंद्र प्रतिदिन संचालित होते हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता लगभग 350 उम्मीदवारों की है। समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रसार भारती और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिताओं के प्रसारण के लिए 3 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत सभी मैच डीडी स्पोर्ट्स, वेव्स, ओटीटी और प्रसार भारती के अन्य प्लेटफॉर्म से प्रसारित किए जाएंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक आनंदेश्वर पांडे ने समझौते का आदान प्रदान किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज आनंद विहार के विवेकानंद स्कूल में आयोजित एक समारोह में बोर्ड परीक्षाओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। श्री सूद ने विद्यालय की नवीनतम तकनीकी पहल फ्यूचर लैब का औपचारिक उद्घाटन भी किया। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ आर.के. जैनमणि ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर में लगा हुआ है और उसकी नमी के कारण दिल्ली NCR में हल्की से मध्यम वर्षा हुई।
राजधानी दिल्ली का बात करें, एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगा हुआ जो दिल्ली के उत्तर में है और इसी के साथ जो मानसून का जो मॉइस्चर है इंटरेक्शन के वजह से दिल्ली में रुक रुक के बारिश एक दो स्पेल हुआ है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत ढही, बचाव और राहत कार्य जारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओवरहेड बिजली की तारों को जमीन के अंदर बिछाने से जुड़े एक पायलट प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन हाउसवेयर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और प्रसार भारती तथा हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिताओं के प्रसारण के लिए 3 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।